أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط مؤمنين الكرام بہت سارے سوالات ہماری ملت جعفریہ کے افراد کے ذہن میں ہیں الیکشن کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ بہت ہی مختصر وقت میں ہماری ملت کے افراد صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری اس گفتگو کو سنیں گے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دے دیا جائے پہلی بات تو یہ کہ الیکشن میں حصہ لینے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان بنے ہوئے تقریباً 66 سال ہو رہے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی بھی حکومت ہو حتیٰ کہ بدترین آمریت کے دور میں بھی حکومتی سطح پر ہماری ملت کے افراد موجود نہ ہوں اور اگر ہم گزشتہ 20 سال جو بھی نام نہاد جمہوریت کہہ لیجئے یا اس کو پرویز مشرف کی آمریت کہہ لیجئے یا یہ گزشتہ 5 سال کا یہ جو ڈرامہ ہوتا رہا اس کو دیکھ لیجئے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسمبلیوں میں ہمارے افراد موجود تھے سینٹ میں بھی ہماری ملت سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے مگر اس کے باوجود خاص طور پر گزشتہ 33 سال سے مسلسل ہم ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی کوئی صورتحال میں بہتری کی صورت نظر نہیں آتی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری آبادی 19 کروڑ کے اس ملک میں دائرے کے 18 کروڑ تو آفیشل ہے لیکن اتنے عرصے میں اضافہ ہو چکا 18.5-19 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 4 سے 5 کروڑ تک ہماری آبادی ہے اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود گزشتہ 33 سال میں ہمیں آئسولیٹ کرنے کی ہمیں کنارے لگانے کی ہر کوشش کی گئی اور ظاہر ہے کہ عالمی سامراج کا ایجنڈا تھا کہ اتنی بڑی آبادی کو بالکل کاٹ کے رکھا جائے الگ کر کے رکھا جائے اسی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے گروہ چاہے وہ مذہبی گروہ ہوں چاہے وہ سیاسی گروہ وہ محفوظ ہیں ان کے ایک دو نمائندے اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے اگر کسی دہشت گرد تنظیم کے ایک نمائندہ بھی پہنچ گیا تو اس نے ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر دیں اس نے دہشت گردوں کو رہا کروایا پنجاب کی جیلوں سے بلوچستان کی جیلوں سے اور باقی وہ عدالت میں کمزور مقدمات پیش کر کے ان لوگوں کو رہا کرا دیا جاتا تھا پھر بعض دہشت گردوں کی سرپرست جماعتیں جن کا بظاہر سامنے سیاسی اور مذہبی چہرہ ہے وہ 4-4, 5-5 نمائندے لے کر اسی اسمبلی میں پہنچتے تھے اور اس کے بعد وہ حکومت گرانے اور چڑھانے کی پوزیشن میں آنے کے بعد ہر حکومت کو بلیک میل کرتے تھے اور حکومت بانج ہوتی ہے الملک عقیم حکمرانوں کا یعنی اکثریت کا یہی قاعدہ ہے سوائے وہ دیدار حاکموں کو چھوڑ کر ان کا یہی قاعدہ ہے کہ حکومت کی راہ میں جو کچھ بھی آ جائے گا وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ہماری طرف مائل مشہور کر رہے تھے کہ وہ اس طرف مائل ہیں ملت کی طرف ہم نے گزشتہ 5 سال میں بھی دیکھا اس سے پہلے بھی دیکھا کہ وہ ان دہشت گردوں کے سرپرستوں کے ہاتھوں اسمبلی میں 4-5 سیٹوں کی بنیاد پر بلیک میل ہوتے رہے اور وہ وزارتیں بھی لیتے رہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی بھی کرتے رہے ان کے لیے ڈھال کا کام دیتے رہے ہماری ماضی میں اپروچ یہ رہی کہ شجر ممنوعہ ہے ہمارے لیے میں سوچ کی بات بتا رہا ہوں شجر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا کہ یہ انتخابات یہ اسمبلیاں یہ سب باطل ہیں اس میں حصہ نہیں لینا اس میں نہیں جانا और फिर ये होता था कि भाई हमारे तो इतने सारे मौजूद हैं, लेकिन अफसोस के साथ हमने देखा कि जब वोट लेने आते थे वो तो हवाला वो हमारा देते थे, हम तो आप में से हैं, लेकिन जब हमारे लाशें गिरते हैं, जब हमारी इमाम बारगाहों पे हमला होता है, जब अजादारी पे हमला होता है, जब अजादारों का कत्लेआम होता है क्वेटा में, बारा चनार में, डी आई खान में, कराची में, गिलगित बल्तिस्तान में, कोहिस्तान में, चकवाल, डी जी खान, लाहौर में, कौन कौन से शहर का नाम, पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ हमारा कत्लेआम नहीं हो रहा अजीज़ों। लेकिन जब हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, हमारी आवाज़ को ना तो मीडिया ने उठाया, ना ही असेंबली में, जिस तरह उठाना चाहिए एक सूरह फातिहा पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, तो वही लोग उस वक्त ये कहते थे कि हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, हमें पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना है। आज तक वो लोग अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में ज़रूरी है कि इस मुल्क में बाइज्जत तरीके से जीने के लिए हमारी सियासी कुव्वत जब तक नहीं बनेगी, हम इन मसाइल का शिकार रहे। आखिर कब तक हम दूसरे की बैसाखियों का सहारा रहें, दूसरे का असा पकड़ के चलें, कब तक हम घुटनियों घुटनियों चलते रहें और दावा करें कुछ पार्टियां कि इनके वोट हमारी जेब में है, यानी हम इतने गिरे पड़े हो, हमारे पास खोने को कुछ नहीं रहा, हमारी मिल्ली इज्जत और वक़ार दांव पे लग गया, हजारों जानों के हमने नजराने पेश कर दिए, सैकड़ों हमारे बेगुनाह अफराद जेलों में बंद हैं, जिसमें गुलाम रजा नकवी जैसे लोग जिनके सारे केस खत्म हो चुके मगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता, उसी पंजाब में जेलों से रिहा कर दिया जाता है लोगों को। और फिर उसके अलावा आप ये देखें कि ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया हमारे साथ, कि हमें डराने के लिए पार्टियों ने हवा बिठाना शुरू किया पंजाब में भी और दूसरी जगहों पर भी। ठीक है, उन्होंने पार्टी की सतह पर ना सही, लेकिन ये खबरें ज़रूर हमारी मिल्लत में फैलानी शुरू की कि अगर हमारा साथ नहीं दिया तो दहशतगर्द आ जाएंगे, आप पर मुसल्लत हो जाएंगे। ये खौफ हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारे लोगों के, हत्ता कि पढ़े लिखे लोगों के दिमागों में भी ये बात बिठाई जाने लगी कि आप अगर अलग होकर ये सब करेंगे तो नुकसान होगा। मेरा अपने उन भाइयों से, अपने उन पढ़े लिखे लोगों से, अपने उन बास दानिश्वरों से, अपनी मिल्लत के तमाम अफराद से एक सवाल है कि मुझे ये बताइए कि मिलकर चलने में हमें क्या मिला आज तक, क्या चीज रह गई हमारे पास? हमने हर पार्टी को आजमा के देखा, उन पार्टीज ने हमें क्या दिया? हमें कुछ भी नहीं दिया। सियासी पार्टियों के लोग हमारी हिमायत में 4.5 साल तक पारा चनार का मुहासरा रहा, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत से वो मुहासरा शुरू होता है और आसिफ जरदारी की हुकूमत तक वो मुहासरा जारी रहता है। किसने वो रास्ता खुलवाया? हम मुतालबात करते रहे, हम गुफ्त शनीद करते रहे और हमें यही कहा जाता रहा कि कत्लेआम हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा, अगर रास्ते पर जाते तो वो कानवाई पर हमला करते। जब हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, अगर हम नुकसान से डरें तो कौन सा नुकसान अब बाकी बचा है जो हमें नहीं पहुँचाएगा? हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे उलमा, हमारे शायर, हमारे नौहा खां, हमारे खतीब, किसको छोड़ा गया? हमारा आम आदमी, एक दफ्तर में बेचारा काम करने वाला, एक कारखाने में मजदूरी करने वाला, किसी को भी तो नहीं छोड़ा गया ना। मैं यहाँ सिर्फ एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, बहुत ही आजिजी के साथ, कि जो ये कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं है हमारा इलेक्शन में जाना, ये इलेक्शन में हिस्सा लेने किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है, ये मराजे उज़्ज़ाम की इजाज़त से हो रहा है, और जिसको इसमें शक हो वो खुद राबता करके पूछ सकता है। यानी हमने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया कि जो गैर शरीय हो, और हमारे मराजे और हमारे मरकज से हमें उसकी तायद हासिल ना हो, और खुशी का इजहार किया गया, बल्कि कहा गया कि इसमें हिस्सा लो, आज नहीं कल कामयाबी होगी। जब आपकी सियासी स्ट्रेंथ बन जाएगी तो फिर देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान में मिल्लत जाफरिया इज्जत और वक़ार के साथ जीती, कितना जोश व खरोश है मोमिनीन में इस अमल के जरिए से। यह हमें कब अंदाजा हुआ? जब हम हैदराबाद में हमने जलसा किया कि हैदराबाद में 1.5-2 लाख अफराद का, उनमें आधी तादाद खवातीन की जमा होना, गांव देहातों के लोग, बाराणी के गरीब लोग, बाराणी यानी रूरल एरिया, देहाती एरिया, गरीब लोग, उनके पैरों में जूती नहीं, किस तरह से उन्होंने आके शिरकत की और एक यकजहती की फिजा पहले जिस शहर में होता था वहीं की लोग बेचारे सड़क पे निकल आते थे, या ज्यादा से ज्यादा कराची के लोग, गांव गांव देहातों देहातों में 700 शहरों में जो धरना हुआ, इसने क्या किया, एक गांव के शिया के दिल में भी वो जज्बा पैदा कर दिया कि वो अपने मिल्लत और मजहब के लिए निकलना चाहता है। तो मेरे दोस्तों, इस पैगाम को याद रखो कि जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हम अपने हुकूक के लिए खड़े हुए, हम अपने मजहब के दिफा के लिए खड़े हुए, हम अपनी मिल्लत के दिफा के लिए खड़े होंगे। हम इज्जत से मर जाएंगे मगर जिल्लत से भीख मांग कर नहीं जिए। आजादारी हमने किसी से भीख में नहीं मांगी है। हम 1400 साल से वाकई कर्बला के बाद से आजादारी कर रहे हैं। हमें इसके लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और हमने 700 शहरों में 4 दिनों रात हमारी औरतों बच्चों ने बूढ़ों ने मातम करके आजादारी बर्पा करके बताया कि ना हमें आजादारी करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत है, ना किसी परमिट की जरूरत। लिहाजा पूरी कौम को ये बात समझ लेना चाहिए कि आपको यक पारचा यानी बिल्कुल मुत्तहिद होकर एक होकर इस बात को समझ लेना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपकी अगर ये बात समझ में नहीं आएगी, कल समझ में आ जाएगी, एक साल बाद समझ में आ जाएगी, दो साल बाद समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान में मिल्लत जाफरिया का इज्जत और वक़ार इसी में है कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी कुव्वत बनाए। और अब जब निकले हैं करने के लिए तो एतराजात के क्यों कर रहे हैं, क्या किया जाएगा फिर? आखिर भीख मांगी जाए, लोगों के कदमों में जाकर बैठ जाए कि हमें माफ कर दो, हमें कत्ल करना छोड़ दो, और वो ये काम छोड़ देंगे? नहीं, जब तक अपने कुव्वत को ताकत को जमा करके हम एक जगह नहीं होंगे, हम इज्तिमाई इज्जत के साथ मरेंगे, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू तो होंगे। किसी की जान इतनी कीमती नहीं जितनी कीमती जान नवासे रसूल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन से ज्यादा कीमती जान किसी की नहीं है। करबला में जितनी कीमती जाने गई उससे कीमती जान कोई है? उन 72 के लिए आज तक लाखों बल्कि अब तो कई करोड़ हो चुके होंगे 1400 साल में अपनी जाने दे चुके, उन नामों पर अपनी जाने दे चुके, इसका मतलब वो सबसे कीमती थे। तो क्या खुदा न करे, खुदा न करे करबला में अल्लाह का दीन खत्म हो गया, अल्लाह का दीन मिट गया? नहीं, जब वो पाक खून जमीन पर गिरा, इस्लाम की आबियारी हुई। जो हमारा साथ देगा देगा, जो नहीं देगा हमें परवाह नहीं है इस बात की। हम अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। हम रहे ना रहे मगर दुनिया देखेगी कि चंद साल में यहाँ क्या सूरत हाल बनेगी, इस मुल्क में क्या सूरत हाल बनेगी इंशाअल्लाह। तशय्यो की तकदीर में इज्जत और विकार है, क्यों? अल्लाह का वादा है, वलिल्लाहि इज्जत वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए, रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए। और जब ये अल्लाह का वादा है तो कोई इज्जत की जिंदगी भी हमसे नहीं छीन सकता, न इज्जत की मौत हमसे छीन सकता है। मुझे यकीन है अपनी मिल्लत पर कि जहां जहां खास तौर पे जवान मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये इस पैगाम को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और हम वक्तन फवक्तन जो भी सवालात पेश होते रहेंगे, इसी तरह आपके सामने आकर इन बातों का, इन सवालात का जवाब देंगे। इस दुआ के साथ के बारे इलाहा बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमें साबित कदम रखना, हमें इस्तेकामत देना। कठिन रास्ता है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, हमें सब्र दे परवरदिगार। रब्बना अफरिग अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन وما علينا إلا البلاغ المبين।